निर्विशेषाशून्यवादी पाश्चात्तदेशतारिणे गुरवे गौरचंद्राय राधिका तदाल्यै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय नामनि गौरात्वेषे नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। आप सबका स्वागत है प्रातः श्रीमद् भागवत सत्संग में श्री राधा वृंदावन चंद्र इस्कान पुणे में। नरसिंह चतुर्दशी कल आने वाली है और भगवान नरसिंह देव के परम भागवत भक्त प्रहलाद महाराज के पांचवें स्कंद श्रीमद् भागवत के 18वें अध्याय से हरि वर्ष में प्रार्थनाओं का श्रवण वर्णन आज करेंगे। ये प्रहलाद महाराज की रियलाइज्ड प्रार्थना है जो आज भी वो करते हैं। सो पांचवां स्कंद श्रीमद् भागवत का उसके अंतर्गत जहां भूगोल खगोल का वर्णन है उसमें हमारी एड्रेस है कि हम जम्बूद्वीप में रहते हैं और जम्बूद्वीप में 9 वर्ष हैं, उसमें से एक ही वर्ष देखने में आता है, बाकी सब सूक्ष्म वर्ष है जो दिखते नहीं है, और जो बाकी 8 वर्ष है उसको भौम स्वर्ग कहते हैं। 3 स्वर्गों का वर्णन है भागवत में। एक तो स्वर्ग लोक जिसमें इंद्र आदि देवता रहते हैं, एक बिल्व स्वर्ग जो धरती के नीचे जैसे चूहा बिल में जाता है ना, तो बिल वाले स्वर्ग मतलब नीचे वाले स्वर्ग, उसमें सूतल लोक का वर्णन है, अन्य लोकों का जिसकी महिमा स्वर्ग से भी ज्यादा है और किसी का भय नहीं है सवाय सुदर्शन चक्र के। और तीसरा स्वर्ग को कहते हैं भौम स्वर्ग। भौम स्वर्ग मतलब इस भूमंडल में स्वर्ग है, तो ये आठ लोक जो हैं नौ में से ये भौम सर्ग कहलाते हैं, और जो स्वर्ग से नीचे आते हैं पहले इन लोकों में 10,000 साल तक रहते हैं और वहां उनको कोई कष्ट नहीं होता है। तो ये भौम सर्ग के अंतर्गत आठ लोग आते हैं, उसमें से एक वर्ष है हरि वर्ष, और इन सारे नौ के नौ लोगों में भगवान विष्णु की उपासना होती है अलग अलग रूपों में। तो विशेषता ये है जो दीप है उनमें तत्वों की उपासना होती है, लेकिन जो वर्ष है उनमें भगवान विष्णु की उपासना होती है सारे वर्षों में। हम रहते हैं भारतवर्ष में, वही एक दिखने में आने वाला वर्ष है, बाकी जो सटल है जिसको देखा नहीं जा सकता है, लेकिन उनका वर्णन भागवत में है तो हम हरि वर्ष का वर्णन कर रहे हैं। तो हरि वर्ष में पहले श्लोक को हमने लिखा नहीं है, लेकिन पहले श्लोक को पढ़ लेते हैं फिर इस श्लोक पे आते हैं जो आज हमको 5:18:8। तो पहले श्लोक में है हरि वर्षे चापि भगवान नर हरि रूपेण आसते। हरि वर्ष में भगवान नर हरि मतलब नरसिंह के रूप में विराजमान है। तद रूप ग्रहण निमित्तम, उसके इस रूप ग्रहण का कारण, क्यों उन्होंने ऐसा रूप ग्रहण किया उसका कारण उत्र अभी धास्यते, आने वाले अध्यायों में वर्णन किया जाएगा सातवें स्कंद में, इसका वर्णन सातवें स्कंद में किया जाएगा। तद दैतम, अब कहते हैं थोड़े में कहते हैं कि उनको जो बहुत प्रिय था, दैत्यम का मतलब प्रिय, राधा जय जय माधव दैत्य, दैत्य मतलब प्रिय, जो भगवान नरहरि का प्रिय था, कौन है भगवान नरहरि का प्रिय, तब कहते हैं रूपम महापुरुष, रूपम महापुरुष गुणभाजनो महाभागवतो दैत दानव कुल तीर्थ करण शील चरित्र प्रहलादो। ये सब प्रहलाद की विशेषण है। एक आदमी एक बार किसी होटल पे गया कमरा लेने के लिए, पूछा नाम क्या है, बोला हाजी हाशिम काजी कसम मियां मौलवी मोहम्मद यूसुफ, बोला इतना रूम ही नहीं है नाम इतना लंबा तो ये पूरा एक एक प्रहलाद के नाम के सारे अलंकार है, बहुत लंबा नाम है। तो क्या कहते हैं कौन है, तद दैतम रूपम महापुरुष, महापुरुष है प्रहलाद, महापुरुष है, और कैसा है गुण भाजनो महापुरुष गुण भाजनो, जिस जो महापुरुषों के गुण है उन सारे गुणों से संपन्न है प्रहलाद, मतलब सदगुण संपन्न महापुरुष के गुण सारे उसमें हैं। महाभागवतो, वो तो 12 भागवतों में एक भागवत है तो महाभागवत पुरुष है, और महाभागवत के बाद लिखा दैत दानव कुल तीर्थ करण, दैत और दानवों के कुल का उद्धार कर दिया, सबका उद्धार करने वाला, सबको पवित्र शुद्ध करने वाला, शील चरित्र, शील चरित्र, कल शील चरित्र के ऊपर कृष्ण भगवान का शील चरित्र और प्रहलाद का शील चरित्र ये है कि अन्य पुराणों में ये कथा आती है कि एक बार चंड और अमर करने कृत्या बनाई कि जाके प्रहलाद को मारो, लेकिन प्रहलाद तो हरि के गुण गा रहा था, कृत्या उसको गई और उधर तो कुछ कर नहीं सकी, कृत्या करने में अगर नहीं मारा तो जिसने बनाया उसको मारेगी, वो वापस लौट के आई और चंड और अमर को मारने लगी। ये प्रहलाद को पता लगा तो प्रहलाद कहता है कि जिन्होंने मेरे को विष दिया, पहाड़ से गिराया, हाथी के पांव के नीचे दिया, आग में जलाया, उनके प्रति अगर मेरी मन में द्वेष नहीं आया हो तो मेरे गुरु के पुत्र जीवित हो जाए, और दोनों वापस जीवित हो गए। तो इसको कहते हैं सील चरित्र, जो किसी में दोष देखे ही नहीं। ये भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी घोषणा की थी कि अगर पांडवों और कौरवों के बीच में मैंने किसी से पक्षपात नहीं किया हो तो ये परीक्षित वापस जीवित हो जाए, कौरवों पांडव मैंने किसी का पक्षपात नहीं किया है, ये भगवान का, और ये यहां प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, और ऐसे हरिदास ठाकुर कहते हैं कि इन बिचारों को पता नहीं है क्यों मुझे मार रहे हैं, भगवान इनको क्षमा कर दो, ये शील गुण कहलाते, इसको कहते हैं शील गुण। शील गुण का मतलब दुख देने वाले में भी दोष न देखें, और ये धर्म, ये जब परीक्षित महाराज बेल के रूप में धर्म से बात कर रहा है तो वो कहता है मेरे को दुख देने वाला कोई नहीं है। ये धर्म के शील के गुण धर्म के गुण होते हैं, जो धर्म के ऊपर जिसकी निष्ठा होती है उसमें शील के गुण होते हैं। अर्जुन को जब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं इसको पकड़ लिए मारो ना, अश्वत्थामा को भार क्यों लाद के चल रहे हो, सिर्फ गर्दन लेके चलो, तुमने कहा गर्दन लेके आऊंगा, पूरा क्यों उठा के चल रहे हो। लेकिन अर्जुन का शील का चरित्र है कि नहीं नहीं, ये निर्णय तो महाराज युधिष्ठिर द्रौपदी करेंगे, मैं तो इसको लेके चलता हूं। वहां भगवान तो उसकी परीक्षा ले रहे थे कि शील गुण इसका कहीं क्रोध के कारण, पुत्रों की हत्या के कारण कहीं अपने गुण से च्युत तो नहीं हो जाएगा। तो ये शील गुण जो है बहुत बड़ा गुण है, अगर भगवत भक्त में आ जाए। इसके लिए प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा है विशेष रूप से निर्मत्सराणाम सताम, जो भक्त होते हैं परम नित्य निर्मत्सर होते हैं, किसी में द्वेष नहीं देखते। तो प्रहलाद कितना निर्मत्सर है, कितना उसका शील चरित्र है, जिसने दुख दिया उसी अपने पिता हिरण्यकश्यप का उद्धार के लिए भगवान को प्रार्थना कर रहा है, ये उसके शील गुण की परिकाष्ठा है। विदुर ऐसे शील गुण वाला है जिसके घर से धिक्का दे के अपमानित होके बेइज्जत होके निकाला गया था, उसी धृतराष्ट्र के उद्धार के लिए वापस हस्तिनापुर आया, इसको बोलते हैं शील गुण। ये तो भगवान और भगवान के भक्त किसी में दोष नहीं देखते। पता लेना है तो राम जी जब वापस वन से लौटे तो पहले केकई को प्रणाम किया, फिर कौशल्या के कक्ष में गए, तो कहते कौशल्या केकई ने वनवास दिया लेकिन पहले प्रणाम केकईयों को किया, और ध्रुव जब वन से लौट के आए तो पहले सुनीता को प्रणाम किया, पहले सुरुचि को किया, फिर सुनीता के पास गए। तो ये जो सबसे मुख्य गुण है भक्तों का है वो शील गुण। शील गुण भगवान रामचंद्र के गुणों को तो जब वर्णन करते हैं यहां किम पुरुष लोक में, तब कहते हैं कहीं किसी का गुण को टेस्ट करना है तो रामचंद्र का गुण उसके लिए कसौटी है, उसके आधार के ऊपर नाप किया जाता है दूसरे के गुणों को, वो दूसरों के लिए उदाहरण है गुण, वो शीलवान कितने हैं। तो ये भगवान का उसके कहते हैं शील चरित्र प्रह्लादो, इतना सारा उसका ऐसे कैसे शील चरित्र हो गया, इतना बड़ा महान कैसे हो गया कि भागवत में उसका ऐसा अद्भुत वर्णन है, और उसका वर्णन कौन कर रहा है ये भी बड़ा आश्चर्य। भक्त भगवान की पूजा करे प्रार्थना करे कोई बड़ी बात नहीं, ये उसका धर्म है। शिष्य गुरु की प्रार्थना करे सेवा करे कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान उठ के भक्त की महिमा गाए या गुरु उठ के शिष्य की महिमा गाए ये अद्भुत है। और नारद ऐसा गुरु है जो प्रहलाद के गुण गा रहा है, ये पूरा सातवां स्कंद नारद जी का प्रवचन है और युधिष्ठिर महाराज उसके श्रोता है, और ये पूरे का पूरा प्रवचन हस्तिनापुर में हुआ कि महल में हुआ, और महाजन धर्मराज उसको सुन रहा है। तो वो नारद जी जिसका गुणगान अपने शिष्य का कर रहे हैं, तो ऐसा उसका कैसे प्राप्त होता है, भक्त में ये गुण कैसे आते हैं, तब उदाहरण देते हैं। अविविधान अनन्य भक्ति योगे न, अविविधान जिसमें कोई रुकावट न पड़े, विधान न पड़े, अनन्य न अन्य और किसी को बीच में जगह नहीं दी जाए, न अन्य और किसी की नहीं, भक्ति योगे न, क्योंकि प्रहलाद महाराज की भक्ति कैसी थी, अविविधान वाली थी और अनन्य थी। अनन्य का मतलब किसी और के ऊपर आश्रय नहीं था, भगवान का आश्रय लिया हुआ था, और अविविधान का मतलब उसमें कोई रुकावट कभी नहीं पड़ी, किसी दोष ने दुख ने परेशानी ने संकट ने उसको विचलित नहीं किया। इसलिए महाप्रभु 100 बार प्रहलाद चरित्र सुना कि कठिनाइयों में आदमी तिल बराबर भी अपने दृढ़ भगवान के भक्ति से हिले नहीं, तो उसका उदाहरण अद्भुत ये प्रहलाद महाराज है। अब कहते हैं सह तद वर्ष पुरुषे, ऐसे प्रहलाद महाराज उस हरि वर्ष के अन्य जनता के साथ उपासते इदम, इस प्रकार उपासना करते हैं। उपासना का अर्थ होता है पास में जाके बैठना, उप का मतलब नजदीक, जब भगवान की भक्ति करती है तो नजदीक जाके करते हैं। इसलिए मंदिर में आके भगवान की भक्ति करने को उपासना कहते हैं, घर में करने को कोई और नाम होगा, हाँ उसका नाम उपासना नहीं होगा, कि भगवान जहां रहते हैं वहां उसके पास आके आसन लगा के भक्ति करनी चाहिए। तो उपासना की बहुत बड़ी परिभाषा है, क्योंकि यहाँ का वातावरण भगवान का घर है, उधर हम अपना घर उसको मानते हैं, उसमें भगवान मेहमान है, हम यहाँ मेहमान हमें, ये उल्टा सा है। नहीं, बहुत बड़ा अंतर है। आप घर के बाहर अगर कह के भगवान का घर है, ऐसे तो कोई नहीं कहता है, अपना घर मानते हैं सब। कोई बुद्धिमान है, ये तो भक्तों को थोड़ी सी बुद्धि आ जाती है, सबको ये बुद्धि नहीं होती। वैसे भी घर के अंदर काम के कीटाणु होते हैं, वह राम का नाम लेना बहुत मुश्किल है। हाँ, इच्छाओं के भरमार होता है, तो ये तो प्रहलाद, ये तो युधिष्ठिर महाराज जैसा महाजन कह रहा है, वो धर्मराज महाजन कह रहा है, ग्रह मूढ़, घर में हमारी बुद्धि अटकी हुई है, इच्छाओं से फंसे हुए हैं, तो वहां ये संभव नहीं है। उपासते, पास में आके बैठना भगवान के। उपासना का अर्थ, एक बार क्लास प्रभुपाद हाउस में भगवद गीता की चार आदमी आते हैं, इंग्लिश क्लास भगवद गीता होती है, मैं बाहर आया तो मेरे को पांच छह आदमी ने कहा, प्रभु जी क्लास बहुत अच्छा था। मैंने तो क्लास में था नहीं, बोला FM रेडियो पे सुन रहा था ना। मैंने बोला ऐसे तो धृतराष्ट्र ने सुना था, क्या फर्क पड़ा। धृतराष्ट्र ने भी FM पे सुना था ना। नहीं तो उपासते तो नहीं हुआ ना उसमें, वो घर सोते हुआ। भाई घर में तो सोते सोते सुनते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, प्रहलाद महाराज ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को कहा कि घर छोड़ के वन में जाके भगवान का भजन करो, क्यों घर में नहीं होगा। मैं अपनी तरफ से नहीं कहूंगा घर में सोते हैं, तो ये प्रहलाद महाराज की शिक्षा है, बनो गत, जाओ वन में, घर को छोड़ो, अंधकूप है, तो शास्त्र का, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। उपासते की परिभाषा ये, क्या करते हैं, उपासते इदम च उदाहरति, इस प्रकार प्रार्थना करते हैं। कैसे करते हैं, इसके तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर है, इसके सारे तात्पर्य में प्रभुपाद जी का एक पहले मुख्य उद्देश्य है कि भगवान नरहरि जो कहा है ना, ये केशव है, और जयदेव गोस्वामी ने जो 10 अवतार स्तोत्र गाया है उसमें सबके पीछे केशव धृता मीन शरीरा केशव धृता नरहरि रूपा, तो इस तरीके से ये भगवान श्री कृष्ण माना अवतार में आते हैं। तो पहले प्रभुपाद जी ये स्थापित करते हैं कि प्रहलाद महाराज के लिए भगवान का ये अवतार, और दूसरा कहते हैं कि ये भगवान कैसे हैं, कृष्ण कैसे हैं, तो उनको ब्रह्मा संहिता से कृष्ण की महिमा गाते हुए कहते हैं, चिंता मणि पर कर सद मसो, ये पूरा श्लोक गा के कहते हैं गोविंद मादि पुरुषम। और फिर सुखदेव गोस्वामी नरसिंह देव को प्रहलाद महाराज, जिसको उसके पिता ने संकट में डाला था, उनकी रक्षा के लिए प्रकट किए हुए थे, और एकदम प्रहलाद महाराज की रक्षा के लिए नरसिंह देव प्रकट हो गए, और ये भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार कई अवतार लेते हैं, ऐसा प्रभुपाद ने इसमें सामान्य अर्थ लिखा। अब आज का श्लोक जो हमारे यहां पाठ करना है उसको पढ़ते हैं, कैसे प्रार्थना करते हैं प्रहलाद महाराज, ये श्लोक है। ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्ते जस्तेजसे आविर आविर भवा वजर नखा वजर दंष्ट्रा करमास्याम रंध्य रंध्य तमो ग्रस्य ग्रस्य ओम स्वाहा अभयम अभयम आत्मनि भूयष्ठा ओम क्षौरम। ये पाठ तो सब नहीं कर सकते, इसको ऐसे ही समझना है। तो प्रहलाद महाराज और सारे हरिवर्ष के नरसिंह भक्त, हमारे भागवत का जो मुख्य टीकाकार श्रीधर स्वामी है, वो नरसिंह देव का परम उपासक था और उस नरसिंह देव के उसके बहुत सुंदर प्रार्थना के मंत्र प्रभुपाद जी ने कुछ श्लोकों के अंदर दिए हैं कहीं। उनका आराध्य देव नरसिंह देव था। इतना बड़ा काम भागवत के ऊपर प्रथम टीका लिखने के लिए नरसिंह देव की सहायता विघ्न विनाश के लिए बहुत जरूरी, तो उसका आराध्य देव ऐसा माना जाता है। तो प्रहलाद महाराज के ओम नमो भगवते, मैं किसको प्रार्थना करना करता हूं, नमस्कार करता हूं भगवान को। नमो का अर्थ क्या होता है? न मम इति नमः, मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ भगवान का है। नमः की सही माना, नमः का अर्थ है न मैं अस्ति, नमस्ते, न मैं अस्ति, मेरा कुछ भी नहीं। असल में नमस्ते की माना है अकिंचन, में कुछ भी नहीं है मेरे पास। न मैं अस्ति इति नमस्ते, तो नमस्ते, ओम नमो भगवते, नमो मैं नमस्कार करता हूं। ये नमस्कार चार सूत्री भगवत गीता में भी है, मनमना भगवत मजमादि माम नमस्कुरु, और भागवत के अंतिम श्लोक में भी नमस्कार का बताया गया है। नाम संकीर्तन जैसे सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनम, प्रणामो प्रणाम करना सब दुख। पहले में क्या है, संकीर्तन करने से पाप नाश होगा, लेकिन पाप का फल तो दुख है, तो दुख कैसे नाश होगा? बोलो प्रणामो हरिम दुख शमनम, हरि को प्रणाम करने से दुख नाश हो जाते। तो प्रणाम करना, ये जो इस टाइम आपके ऑफिस में बने हुए हैं ना ठप्पा, वो उल्टा आकर होता है ना, उनके ऊपर उल्टे सारे शब्द होते हैं, और उसको जब पन्ने पे लगाते हैं तो सीधे हो जाते हैं। तो जो माथे की लकीरें उल्टी होती हैं, प्रणाम करते हैं नीचे ना तो सीधी हो जाती है। ये बिल्कुल जो कुछ करें गड़बड़ सब सीधा हो जाता है। तो ये इसका प्रणाम का ये लाभ है। और जो कीर्तन में ताली बजाता है ना, वो हाथ की लकीरें बदल जाती है। रूप गोस्वामी कहते हैं कीर्तन में ताली बजाने से हाथ की सारी लकीरें बदल जाती। अब कीर्तन में 6 महीना ताली बजा के कीर्तन करे, नृत्य करो, फिर जाके पामिस्ट को देखा, वो बेहोश हो जाएगा। बोलेगा पहले तुमको ऐसे होना था, अब तो तुम्हारा ठीक हो गया सब कुछ। एक भक्त हमारा है ब्रह्मचारी, उसी ने किसी ने कहा तुम 40 में मर गया, वो अभी 50 का हो गया जिंदा। उसकी लकीरें बदल रही है। और वैसे भी पेड़ के ऊपर कितने भी पक्षी बैठे हों, एक छोटा बच्चा भी ताली बचाएगा सब उड़ जाएंगे कि नहीं उड़ जाएंगे? तो इस हरी रूपी वृक्ष के ऊपर कितने भी पाप के पक्षी है, हरी बोल भाग गए। तो कीर्तन किया तो सब भाग जाते हैं, वो रहते नहीं। तो एक ऐसा पीछे बैठा था कोई भक्त, बोला कहाँ उड़ के जाएंगे? बोला जो नहीं करता उसके सर के ऊपर। तो यहाँ तो इतना भक्त कीर्तन करते हैं, यहाँ सबके पाप के पक्षी उठेंगे, कहाँ जाएंगे? ये बड़ी बिल्डिंगें बन रही है ना, ये अगर मंदिर में नहीं आएंगे तो सब उधर जाके जमा होंगे। हरे कृष्णा, ये श्लोक बाहर लिख दो कि यहाँ कीर्तन करने से पाप के पक्षी उड़ते हैं, सावधान पड़ोसियों, या कीर्तन करो नहीं तो पाप को ग्रहण करो। कम से कम नजदीक आते हैं तो मंदिर में तो आए, उपासना तो करे। हरे कृष्णा, ठीक है। ओम नमो भगवते, और किसको नमस्कार करते हैं? नरसिंहाय, भगवान श्री कृष्ण नरसिंह देव को नमस्कार कर। भाई क्यों किसी को नमस्कार करते हैं? संसार में नमस्कार आदमी किसको करता है? चमत्कार को। जहां चमत्कार होंगे वहां नमस्कार होती है, वैसे सामान्य नहीं होती है। तो कहते हैं तेजस तेजस वे, अरे जहां भी जिसका तेज है उस सारे तेज का आप आधार हो, इस आपको नमस्कार करता हूं। जो भी जहां तेज है उस तेज का आप आधार हो, तेजस तेजस वे, जहां से तेज आते हैं उसका स्रोत आप हो, आप उसका सोर्स हो, आपसे तेज आता है। तो भगवान कहते ठीक है मेरे से तेज आ रहा है, तुम्हें क्या चाहिए? बोला आवेर आवा भाव, आप प्रकट हो जाओ, आप प्रकट हो जाओ। ये ऐसे ही है जैसे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, यही भाव है कि आविर्भाव आविर्भाव आविर्भाव। कैसे आऊं? बोला वज्र नख के साथ आओ और वज्र दंश के साथ आओ। जिसके नाखून वज्र जैसे हैं और जिसके दांत वज्र जैसे हैं। बोले तुम्हें डर नहीं लगता? बोला मुझे डर नहीं लगता है। क्यों? बोला करूं क्या ये आके? तो करता है कर्म आस्याम रंध रंध, जो मेरी हृदय के अंदर भोग करने की कर्म की आशाएं पैड़ी है ना, उसको रंध रंध का मतलब नाम निशान मिटा दो, उसको उसको चीर फाड़ के बाहर फेंक दो। अब ये प्रार्थना रोज करनी चाहिए भक्तों को, नरसिंहदेव को, कि हमारे हृदय में जो असुरी भावनाएं भोग की, भोग की भावना को क्या बोलते हैं? असुरी भावना। जहां भोग शब्द आ जाए भावना में उसको असुरी भावना के, ईश्वर हम सिद्धो बलवान हम सुखी, ये भोग की भावना है। मतलब भोग की भावना असुरी भावना है। इस भावना को रंध रंध, रंध का मतलब रोंध के निकालो। इसका रोंध के निकालने का मतलब ये कि ये गांठ ऐसी है कि खुलेगी नहीं, इसको काट के अंदर से बिल्कुल निकाल दो। रंध रंध निकाल दीजिए, निकाल दीजिए असुरी वासना। प्रभुपाद का तात्पर्य काम आशयान के ऊपर है, और श्लोक एक और भी चौथे स्कंद से इसी के लिए कोट किया है, कर्म आशयान के ऊपर, वो सनकादि ऋषियों का श्लोक जो पृथु महाराज को उपदेश दे रहे, वहां से इसमें प्रभुपाद जी ने 22वें अध्याय का 39वां श्लोक कोट किया है। तो अब और क्या कर्म? बोला फिर क्या होगा? बोला क्या जरूरत है कर्म आशय को निकालने की? बोला तम तम, इन्होंने अंधकार पैदा कर दिया अंदर में, अंदर में जो अंधकार है, जो हम ओम अज्ञान तिमरानंद से, ये अज्ञान अंधकार कौन सा है? कर्म आशय का। ये जो भोग की वासना है ये असल में ज्ञान को ढक देती है, अज्ञान ही ज्ञान को ढकता है। अज्ञान है नावर्तम ज्ञान तेन मोहयंती जंतव, जंतव का मतलब क्या? आदमी पशु बन जाता है। जंत मतलब जंतु, आदमी मानव से जंतु कैसे बनता है? जब उसका अज्ञान उसके ज्ञान को ढक देता है, तो अज्ञान को अंधकार कहते हैं। तो तम तम, जो तमस अंधकार है, अंधकार है उसको ग्रस्स ग्रस्स, उसको भगा दो भगा दो, अंधकार को भगा दीजिए भगा दीजिए। ओम स्वाहा, यह है समर्पण, हम अपने आप को अर्पण करते हैं। स्वाह का मतलब अर्पण करना, ओम स्वाहा। तो क्या मिलेगा? अभयम अभयम, भय से मुक्त कर दीजिए, भय से मुक्त कर दीजिए। आत्मनि आत्मनि, आत्मनि का मतलब है एक तो मन शांत हो जाए, एक आत्मनि का मतलब है एक मन में शांति आ जाए। श्री प्रभुपाद जी ने आत्मनि का अर्थ लिखा है, स्वाहा अभयम अभयम आत्मनि इन माय माइंड, भूयष्ठा आप प्रकट हो जाइए, स्थापित हो जाइए। कहां भगवान को बुला रहे हैं? मन में। ऐसा दामोदर अष्टक में क्या पढ़ते हैं? हमारे मन में आविर्भाव हो जाओ। तो भगवान का, जब भगवान श्री कृष्ण का प्रकट्य का भागवत में पढ़ते हैं तो लिखा है भगवान अपि विश्व आत्माना भक्तानाम अभयंकर आवेश आवेश अंश भागे न मन अनंक दुमदुभि। वासुदेव के मन में भगवान प्रकट हुए, जो भक्तों को भय से मुक्त करने वाले हैं। तो मन के अंदर भगवान को प्रकट करना है। हमारे मन में प्रकट हो जाइए, क्योंकि कचरा सारा मन में होता है। कई कर्मों की जो भी वासनाएं हैं उनका भंडारा मन में होता है। मन कौन सा है, क्या स्थान है? कर्म की वासनाओं का पेटारा है। वासना किसको कहते हैं? आपको वासना की परिभाषा क्या है? वैसे वास शब्द का मतलब है गंध, फ्रेग्रेंस। जैसे ये फूल हैं, ये पहने हुए हैं, अब इसको उतार के रखूंगा फिर भी कपड़ों में इसकी थोड़ी सी गंध रह जाएगी, इसको कहते हैं वासना। वो चीज वहां नहीं हो लेकिन उसका इंप्रेशन पड़ा हो। ऐसे ही कई ऐसे कर्म हैं जो अभी कर्म सामने नहीं है लेकिन उसकी वासना है, मन के ऊपर प्रिंटेड है। जैसे कभी यहां से कोई वृंदावन गया और वहां रबड़ी खाई, अब रबड़ी तो उधर खाई भूल गया, इधर आते आते रात को सोए से रबड़ी वृंदावन की, वो वासना उधर अभी तक पड़ी होती है उस टेस्ट की। तो ऐसे कई कर्मों की वासना अनादि काल से मन के ऊपर इम्प्रिंट है, और भगवान जब आएगा तभी उनको जड़ से उखाड़ के निकाल सकता है, हमसे नहीं निकलेगी। मन के अंदर कर्म की वासना है, ये जो हमारा सद्वासना है, मनवंत्र अथ सद्वासना, जो मनवंत्र भागवत का विषय है, उसमें हर एक मनु सद्धर्म की स्थापना करता है जिससे वासनाएं शुद्ध हो, वासनाओं को शुद्ध करना है। और ईशानु कथा को कहते हैं वासनाओं को जड़ से निकाल देती है भगवान, और भगवान की भक्तों की कथा सुनने से वासनाएं जड़ से निकल जाती। तो ये दो जो विषय है भागवत के, ये मन की वासनाओं को निकालना है। मन वैसे दूसरा शरीर कैसे मिलता है, मन के कारण, मन ही दूसरे शरीर का कारण है। वायुर्गंधानि वाश्यात् श्रोत्रम चक्षु रसनम ग्राणम एवचे अधिष्ठाय मनश्चायम विषयान उपसेवते। 15वें अध्याय में दूसरा जन्म कैसे होता है, हवा जैसे फूलों के ऊपर से गंध ला जाती है, ऐसे कर्म की वासनाएं मन के अंदर एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, और मन के चारों ओर इंद्रियों को रखकर वासनाओं को पूरी करने के लिए नया शरीर मिलता है। वो हमारी भाषा में हम बोलते हैं जब प्लेन का कर्श होता है तो क्या चीज ढूंढते हैं एक्सपर्ट जाके, ऐसे जब आदमी मरता है तो यमराज के आदमी आके किसको ढूंढते हैं, मन को। ये ब्लैक बॉक्स है हमारा, इसका नाम ब्लैक बॉक्स क्यों लगते हैं कि काले साहब सारे काले काम है इसमें, अंधा है वो, इसी को निकालते हैं, फिर इसी को डिकोड करते हैं कि इसका क्या क्या वासना है, इसको क्या देना चाहिए। अब भगवान को कहते हैं हमारे मन में आके आविर्भाव हो जाओ, तो अगर यम के दूत आएंगे और उधर भगवान को देखेंगे तो प्रणाम करके चले जाएंगे, तो फिर तो ले जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता है ना। तो मन को ही सारा झमेला मन का है, इसलिए भगवत गीता में भगवान सीधा कहते हैं मन मेरे को दे दो, क्योंकि तुम्हारी समस्या का कारण यही है। वो एक ही चीज मांगते हैं, कुछ नहीं मांगते हैं, मैं अर्पित मनो बुद्धि, तुम मन और बुद्धि मुझे अर्पित कर दो, यही तुम्हारे संकट का कारण है। तो यहां मन में भगवान को प्रकट करना, ऐसा प्रहलाद महाराज कहते हैं हमारे मन में प्रकट हो जाइए, मन की जो कर्म आसना है और जो कर्म की ग्रंथियां हैं उनको सबको विध्वंस करके निकाल दीजिए। तो अब इसका श्लोक का अर्थ क्या हुआ, हमारे प्रणाम है आपके चरणों में भगवान नरसिंहदेव, जो आप सारे शक्ति के स्रोत हैं, हे मेरे स्वामी, आपके वज्र जैसे नख और दांत हैं, आप कृपा करके मेरी असुरी वासनाओं को, कर्म की वासनाओं को, जो इस भौतिक जगत में बंधन का कारण है, उनको जड़ से निकाल दीजिए। हमारे हृदय में प्रकट हो जाइए, अंधकार को नाश कीजिए और हमें निर्भय बनाइए, और इस भौतिक जगत के प्रवाह से बचाइए, जन्म मृत्यु से बचाइए। और क्षौरम जो है वो बीज मंत्र है, जैसे क्लम काम का बीज है, ऐसे नरसिंह देव का बीज है क्षौरम। तो क्षौरम का मतलब बीज, आखिरी शब्द जो है वो बीज मंत्र है। तो हर मंत्र के साथ बीज लगता है, वैसे तो हर मंत्र का एक बीज होता है, एक ऋषि होता है, जैसे इसका ऋषि प्रहलाद है, प्रहलाद ही इस मंत्र का ऋषि है क्योंकि पूजा प्रहलाद करता है, बीज क्षौरम है। और एक हर एक मंत्र की शक्ति होती जिसके द्वारा वो मंत्र अपना फल दिखाता है। तो ये इसलिए भगवत गीता पूरे को कहते भगवत गीता माला मंत्रस्य, भगवान वेद व्यास ऋषि ही, वेद व्यास इसके ऋषि, अनुश्रुप छंद, श्री कृष्ण आराध्य देव, भगवत गीता में आराधना किसी करनी है, भगवान श्री कृष्ण की। असोचान सोचस्तम प्रज्ञा वादांश भाष्येति बीजम, यहां से भगवद गीता शुरू हुई है। सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज इति शक्ति, जब ये करेंगे तब हमारे को भक्ति की शक्ति मिलेगी। तो हर एक मंत्र का ये सिद्धांत होता है शास्त्र, तो यहां बीज क्षोरम है, तो ये इसका अर्थ हो गया। अब श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य सीधा कर्माश्रम के ऊपर है। लिखते हैं कि चौथे अध्याय के 22वें, चौथे स्कंद के 22वें अध्याय के 39वें श्लोक में सनकादि ऋषि कहते हैं पृथु महाराज को, यत पाद पंकज प्लास विलास भक्त्या कर्माश्याम ग्रथितम उद ग्रंथिंत संत तद्वन्न रिक्त मत्यो यतयोपि रुद्धः श्रोत गुणस्तम अरणम भजवासुदेवम्। इसमें दो विभाग है श्लोक में। एक विभाग है कि जिसने यद पाद पंकज प्लास विलास भक्त्या, भक्ति के द्वारा जिसने भगवान के चरण कमलों का पद पंकज, पद मतलब चरण, पंकज मतलब कमल, भगवान के सारे अंगों की कमल से क्यों तुलना दी जाती है? और भी पुष्प बहुत खुशबू वाले हैं, सुगंध वाले हैं, सुंदर है, कमल से ही क्यों तुलना दी जाती है? बहुत सॉफ्ट है, निर्लेप है, पानी से दूर रहता है। बोलो बरदराज, गंदगी से मैं होते हुए भी बाहर खड़ा होता है। हाँ भैया जी, उनसे कोई और सुंदर नहीं है।
कमल ये ऐसा है जो कि ब्रह्मा के द्वारा
किया। बहुत अच्छा, ये है अल्टीमेट आंसर। पहले कमल पैदा हुआ, फिर ब्रह्मा पैदा हुआ, ब्रह्मा ने कमल को पैदा नहीं किया है। तो भगवान की उपमा उससे दी जाती है जो ब्रह्मा की सृष्टि नहीं है। तो कमल ब्रह्मा का उद्गम स्थान है, इसलिए भगवान का अंग कमल से तुलना दी जाती है, क्योंकि वो दिव्य है, ब्रह्मा का जन्म स्थान है, ब्रह्मा ने उसको नहीं बनाया। तो भगवान की उपमा उपमा अनुपम होती है, जिसकी और कोई कंपेरियन नहीं की जा सकती है। तो पद पंकज प्लास, प्लास का अर्थ क्या होगा? वैसे प्लास कहते हैं, जैसे अगर कमल है तो उसके कोमल पत्ते, और जब पद है, चरण है, तो उसकी उंगलियों को कहते हैं प्लास, जो चरण की उंगलियां, उस चरण की उंगलियों को क्या करता है? विलास। विलास का मतलब क्या है? जैसे मेरा मानस हंस भगवान के चरण कमलों में रमण करे। विलास का मतलब क्या? भक्त होते हैं उनका आराध्य चरणों का होता है। वात्सल्य और माधुर्य के भक्त भगवान के मुख कमल की बात करेंगे, वो जब भी प्रार्थना करेंगे तो कमल नयन कहेंगे, क्योंकि उनका जो ध्येय होता है वो मुख के ऊपर होता है और दास का चरणों के ऊपर होता है। ऐसे भाव उनके में ऐसे है। देखेंगे हमारे दामोदर अष्टक वाला मुख की बात करता है, बार बार हम तो आपका मुख देखना चाहते हैं, और जबकि दास्य भक्त हो, ये प्रहलाद आदि दास्य भाव के तो चरण की बात करते हैं। तो चरण, भगवान के चरण जो है उसको उसको शंकर ब्रह्मा आदि देवता कहते, तव पाद पोते न महत कृते न, ये गर्भस्तुति में कहते भगवान आपके चरण कमल ऐसी नाव है जो भवसागर को पार करती। इस नाव में चढ़ना नहीं है, केवल इस नाव का ध्यान करने से भवसागर पार हो जाता। और महत करते नहीं, ये महात्माओं ने आपके चरणों की नौका को बनाया है। और फिर बहुत अच्छा लिखा है कि जब वो ये संसार पार कर जाते हैं भवसागर, तो नौका को छोड़ के जाते हैं ताकि दूसरे भी उसका सहारा लेके आ जाए। और वहां प्रभुपाद जी ने लिखा है भक्ति के साधन छोड़ के जाते हैं, जो दूसरा भी करके संसार पार कर सकता है। तो तव पाद पंकज प्लास विलास भक्त्या, जो भक्ति से भगवान के चरणों कमलों का आश्रय ले लेते हैं, उनका क्या होता है? कर्माश्याम गृथिम अगत्यम संत, ऐसे संतों की भौतिक भोग की कर्म की वासनाएं अपने आप नाश हो जाती। इसके तात्पर्य में प्रभुपाद ने एक उदाहरण दिया है कि कर्म की वासनाएं ऐसे हैं जैसे नदी की लहरें। अभी लहरें कभी नदी में बंद होती है? नहीं हो सकती। ऐसे भौतिक इच्छाएं कभी बंद होती ही नहीं। फिर कहा कि नदी जाती है समुद्र में, कभी कभी समुद्र में ज्वार भाटा आए और पानी नदी की तरफ जाए तो नदी की लहरें ठंडी पड़ जाती है और समुद्र का तूफान दिखाई देता है। ऐसे ही जो हमारी अपनी कर्म की इच्छाएं हैं वो खत्म होने वाली नहीं है, लेकिन भगवान के सेवा की कर्म की इच्छाओं की लहर अगर आ जाए समुद्र के ज्वार भाटा की तरह, तो हमारी इच्छाएं अपने आप छोटी हो जाएंगी और भगवान की सेवा की इच्छाएं बड़ी हो जाएंगी। तो इच्छा नहीं बदलनी है, वही इच्छा जैसे बाजार में जा रहे हैं, बहुत अच्छा आम दिखाई दिया तो मैं ले जाऊं बच्चों के लिए, ये हुई कर्माशय, और मैं ले जाऊं राधा वृंदावन चंद्रों को देना, ये हो गई भक्ति की इच्छा। काम वही है, चीज वही है, सिर्फ मन के चेतना में परिवर्तन करना। तो ये जो कैसे जाएंगी कर्म की वासनाएं, जाएंगी नहीं। इन्हीं चीजों को फिर प्रभुपाद ने कहा हायर टेस्ट, परम दृष्टवान अनिवर्तन्ते, ये श्लोक कह के यहां पूरा किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है, कर्म की वासनाएं खत्म होने वाली नहीं है। भक्ति से वो सब चीजें भगवान की सेवा में लग जाती हैं। ऐसे नहीं कोई अच्छी चीजें ही भगवान की सेवा में लगाई जाते हैं। शुभाशुभ फले रेवम कर्म से, शुभाशुभ फले रेवम मोक्ष से कर्म बंधनाथ, शुभ और अशुभ दोनों लिख दिया। भाई अर्जुन कौन सा काम कर रहा है, लड़ाई करके लोगों को मार रहा है, कोई शुभ काम है क्या? हाँ अर्जुन शुभ काम कर रहा था क्या, युद्ध कर रहा था, आदमी को मार रहा था, लेकिन फिर भी भगवान की भक्ति कहलाता है, क्यों? अर्पण भगवान को कर दिया। शुभाशुभ फले एवं कर्म से मोक्ष से कर्म बंधनात्, शुभ हो या अशुभ हो, इच्छा कैसी भी हो, लेकिन भगवान की सेवा में लग जाए और स्वयं उसमें भोग की भावना खत्म हो जाए तो वो इच्छा इच्छा नहीं रह जाती। ये बहुत, तो कैसे, तो भक्तों की ये काम की इच्छाओं की ग्रंथियां ही नष्ट हो जाती है। अब दूसरा कंपेयर करते हैं, रिक्त मत्यो, रिक्त का मतलब खाली और मत्यो का मतलब जिसने भगवान को अपना सर्वस्व नहीं माना है। मति का मत अर्थ होता है जिस बुद्धि ने भगवान का ग्रहण नहीं किया, वो बुद्धि जो भगवान को अपना स्वामी मान लेती है उसको कहते हैं सती मति, सती मति। और जो बुद्धि अभी संसार में भटकी हुई है उसको कहते हैं रिक्त मत्यो, वो खाली पड़ी है। किससे? भगवान के स्थान से खाली पड़ी है, दुनिया से भरी हुई है। तो रिक्त मत्यो, रिक्त मत्यो में कहूं कौन आते हैं? कर्मी और ज्ञानी, कर्मी और ज्ञानी। इसलिए मेरे ख्याल नाम में नीचे जैमिनी आदि ऋषि लिखा है, इतने बड़े वेदांत शास्त्र को जानने वालों की भी मति रिक्त रहती है, क्योंकि भगवान का निर्णय नहीं है, खंडन मंडन है सिर्फ। तो रिक्त मत्यो, जिनकी मति खाली है, वो ऐसे कर्म की आशाओं से मुक्त नहीं हो सकते हैं। फिर क्या करना चाहिए? तो कहते हैं अरणम भज वासुदेवम, भगवान श्री कृष्ण का शरण लेना चाहिए, बाकी सारा काम छोड़ देना चाहिए। तो आगे श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं इस भौतिक जगत में सभी लोग भोग करना चाहते हैं जितना उनसे हो सके और जब तक वो कर सके, ये एक नेचुरल टेंडेंसी है इस दुनिया में। दो बीमारियां हैं, भोक्तापन और कर्तापन, मैं भोगता हूं और मैं करता हूं, ये दो बीमारियां हैं। भगवान भोगता है और भगवान करता है, ये बात समझ में आ जाए तो समस्या का समाधान हो जाए। भोक्तापन और कर्तापन से अहम आता है, मैं करता हूं तो अहंकार आ जाता है। भोक्तापन से लोभ बढ़ता है, और भोगना है और भोगना है और भोगना है। तीन रास्ते नरक के बताए हैं, कौन से तीन रास्ते भगवद गीता में नरक के हैं? काम क्रोध लोभ नरक द्वार। और तीन बार ये जो जय विजय का अवतार है, ये भगवान ने तीन इन दोषों का दर्शन कराया है। लोभ का प्रतीक हिरण्यकशिपु है, जो धन का लोभी है, और काम का प्रतीक रावण है, और क्रोध का प्रतीक शिशुपाल है। तो काम क्रोध लोभ की ये तीनों मूर्तियां भगवान ने अपने भक्तों के द्वारा अभिन्न करके दिखाई है कि क्या परिकाष्ठा है ये, और यही नरक के द्वार है। ये तीनों का तीनों में ये तीन दोष दिखाए हैं मुख्य रूप से। यहां इसलिए आपको बता दें कि रावण को खराब नहीं कहना, हिरण्यकशिपु को खराब मत कहना, ये तो भगवान के पार्षद हैं, लेकिन उन्होंने जो किया है ऐसे करने वाला काम खराब है। लोग क्या करते हैं, रावण को ही कहते खराब था, गालियां देते हैं, और अंदर अपने रावण बैठा होता है। उदाहरण हम सामान्य देते हैं, अपने यहां ड्रामा करेंगे नरसिंह के अवतार का, तो एक भक्त को हिरण्यकश बनाना पड़ेगा, फिर उसको प्रसाद बंद करेंगे तो राक्षस है। वो बेचारा ड्रामा कर प्रभुपाद, तो जिसने हिरण्यकश का ड्रामा किया, ओ थैंक यू वेरी मच मिस्टर हिरण्यकशिपु, प्रभुपाद ने कहा। अच्छा ड्रामा हिरण्यकश का भी भक्ति करता है ना, तो ऐसे भगवान ने अपने भक्तों के द्वारा ये लीला की है। और हमको दुख होता है जब रावण का पुतला बनाते हैं दशहरे के दिन, और फिर उससे बड़े रावण को कहते हैं इसको तीर मारो। भाई रावण को तीर मारने का अधिकार राम को है या किसी रावण के बाप को है? वो और सब किसी नेता को पकड़ के आते हैं जो रावण से भी ज्यादा गिरा है, उसको कहते हैं रावण को तीर मार। रावण पुलस्त कुल का ऋषि पुत्र विश्रवा का है, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, वेदज्ञ है। उसने तो ड्रामा करके काम का जो है एक अभिनय करके दिखाया कि ये नाश का रास्ता है, लेकिन उसको जलाने का वंश नाश का काम हो जाता है, वंश नाश हो जाता है। हरे कृष्ण। आगे श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, इसलिए क्योंकि कर्म की इच्छाएं सदा बनी रहती हैं और वो भोग करने में लगा रहता है, इसलिए बार बार उसको शरीर ग्रहण करता है, करना पड़ता है, और ये जन्म मृत्यु का चक्कर रोका नहीं जा सकता है। इसलिए रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, अन्य अभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा। तो ये किसके लिए श्लोक है? कर्माशया। कर्माशया किसके पास होती है? ज्ञान कर्म आदि अनावृतम। ज्ञान और कर्म जब तक रहेगा तब तक आशाएं रहेंगी, तो इन दोनों से ऊपर उठेगा तब मुक्त, तब भक्त कहलाएगा। ये कर्म वासनाएं कहां से पैदा होती हैं? प्रभुपाद जी कहते हैं ये कहां से पैदा होती हैं? तब कहते हैं अज्ञानता के कारण। इनका जन्म कहां से होता है? अज्ञानता से, इग्नोरेंस। दे आर कास्ट बाय द डेंस डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस। और इसी के कारण पूर्ण रूप से भक्ति में लगना बहुत कठिन लगता है, तो अज्ञानता इस तरफ आने नहीं देती। और फिर कहते हैं कि ये भौतिकता का उदाहरण क्या है? प्रभुपाद सीधा सा कहते हैं, देयरफॉर इसलिए वी शुड ऑलवेज ऑफर आवर प्रियस्ट लॉर्ड नरसिंह देव हु किल्ड हिरण्यकशिपु पर्सोनिफिकेशन ऑफ मटेरियल डिजायर्स। इसलिए सदा हमको नरसिंह देव को प्रार्थना करनी चाहिए, जैसे उन्होंने हिरण्यकश का वध किया ऐसे हमारी भौतिक इच्छाओं का नाश करे। और फिर कहते हैं हिरण्यकशिपु कहते हैं सोने को और भोग के पीछे जो भागे वो हिरण्यकशिपु, और ये भौतिकवादी लोगों का प्रतीक है हिरण्यकशिपु। और जिसको भोग की कामनाएं होती हैं वो दूसरे से हमेशा ईर्ष्या करता है, और हिरण्यकशिपु अपने बेटे प्रहलाद से ईर्ष्या करते थे और उसको कष्ट पहुंचा रहे थे। इसके बाद दूसरा श्लोक हम पढ़ेंगे आज, क्योंकि ये सारा श्लोक हमको कल तक पूरे करना है सीरीज, तो आगे का श्लोक पढ़ते हैं। जैसे नरसिंह देव ने आके प्रहलाद महाराज की रक्षा करके हिरण्यकशिपु को विनाश किया, ऐसे भक्त चाहते हैं कि भौतिक इच्छाओं का भगवान नाश करके हमारी प्रार्थनाएं सुन के प्रहलाद की तरह हमारे हृदय को भी शुद्ध कर दे। अब दूसरे श्लोक को पढ़ते हैं, नवा श्लोक, ये प्रहलाद महाराज की प्रार्थना का दूसरा बहुत उत्तम श्लोक है। स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलो प्रसीदतम, पढ़ेंगे पढ़िए, स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खल प्रसीदताम ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजताद् अधोक्षजे आवेश्यात्मनो मतिर् आपे अहेतुकी। अब प्रहलाद महाराज कहते हैं स्वस्ति अस्तु विश्वस्य, पूरे विश्व का कल्याण हो, यह है प्रभुपाद के तात्पर्य में इसके है वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्यः एव च, ये कहते, इसको कहते हैं वैष्णव जो सबका भला चाहता है। प्रहलाद महाराज परम वैष्णव कहते हैं स्वस्ति अस्तु विश्वस्य, पूरे विश्व का कल्याण हो। स्वस्ति का मतलब कल्याण, स्वस्ति वाचन कहते हैं कल्याण के लिए। बोला सब विश्वों में कितने सारे एनवियस पीपुल हैं। खलौ प्रसीदताम, खलौ का मतलब खल, खल किसको कहा है भागवत में, कंस को खल कहा है, कंस को खल कहा है, असुर है कंस, उसको खल कहा है। प्रसीदतम का मतलब वो भी शांत हो जाए, उनको भी शांति प्राप्त हो, ये है नॉन एनवियस डिवोटी की निशानी। खलो प्रसीदताम, बोला कैसे होगा ये, ध्यायन्तु भूतानि, ध्यायन्तु भूतानि शिवम मिथो धिया, भूतानि शिवम, भूतानि शिवम मतलब सबका भला हो, सबका कल्याण हो। मिथो दिया, एक दूसरे के लिए हम ऐसे सोचें, इसको कहते हैं कोऑपरेशन, हम एक दूसरे का भला सोचें। बोला कैसे, ध्यायन्तु, जब ध्यान करेंगे किसका, भजताद अधोक्षजे, जब भगवान अधोक्षजे का ध्यान करेंगे तो क्या होगा, मनश्च भद्रम, मन शांत हो जाएगा और हम एक दूसरे का भला सोचेंगे, और तब जो बदमाश है वो भी शांत हो जाएंगे। साधन बता रहे हैं। और फिर प्रार्थना करते हैं आवेश आत्मनानो मतिर, हमारी बुद्धि में भगवान आप प्रकट हो जाइए, अहितुकी, हम आपकी अहितुकी भक्ति करना चाहते हैं। तो ये बहुत स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलौ प्रसीदता, और खलौ की आप ट्रांसलेशन में प्रभुपाद जी ने लिखा है द एनवियस, फिर इनटू ब्रैकेट लिखा है ऑलमोस्ट एवरीवन। प्रभुपाद ने पहले एनवियस लिख के फिर लिखा है ऑलमोस्ट एवरीवन, बड़ा अद्भुत है नहीं। जैसे नराधम के लिए प्रभुपाद ने कहा 99% नराधम, और उसका रीजन क्या बताया भगवत गीता में, दुष्कृति नो मूढ़ा, उसमें नराधम 99% का रीजन क्या बताया, आप ब्रह्मचारी हैं, आपको पता नहीं है, गर्भदान संस्कार नहीं करते हैं इसलिए, बिकॉज नोबडी इज डूइंग गर्भदान संस्कार, इसलिए सारे नराधम 99%, और यहां 100% खल है। क्यों? क्योंकि ईर्ष्या भरी हुई है सबके हृदय में, ईर्ष्या जिसके हृदय में है वो खल है, और प्रसिद्धताम वो भी शांत हो जाए, उसको ध्यान करना चाहिए सबके कल्याण का, एक दूसरे का भला हम करें। मन शांत कैसे होगा, कैसे दूसरे का भला करें, जब अधोक्षज का भगवान श्री कृष्ण जो इंद्रियों से मन से बुद्धि से परे है, अधोक्षज है, तीन बातें लिखी, मन बुद्धि इंद्रियों से परे, और हरे कृष्ण मंत्र के पहले तात्पर्य में प्रभुपाद ने क्या लिखा, द साउंड वाइब्रेशन बियॉन्ड बॉडी माइंड एंड इंटेलेक्ट, बहुत ये तीनों चीजों से परे क्या है, ये भगवान का नाम ही भगवान है, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, इसलिए इसके तात्पर्य में पिछला प्रभुपाद ने लिखा है, कृष्ण भावना अमृत संघ की स्थापना लोगों को एक दूसरे के भले के लिए किया है, और ये कृष्ण भावना भावित लोग जाए तो पूरा दुनिया शांति हो जाए, कल भी शांत हो जाएंगे, तो इसमें मिशन है, लास्ट पार्ट ऑफ पर्पट में प्रभुपाद जी का मिशन है कि हमने इस्कान की स्थापना क्यों की है, खल प्रसिद्ध हो जाएं और सबका भला एक दूसरे के करें, तो वो आगे आएगा, भद्रम सब करें, अधोक्षजय की परिभाषा है, आविराश लेट, हमारा मन आप में आविर्भाव हमेशा एब्जॉर्ब रहे, तलीन रहे भगवान के स्मरण में, हमारा मति अपि अहितुकी, अहितुकी बुद्धि हमारी आप में लगी रहे, तो इसका अर्थ क्या हुआ, मे देयर बी अ गुड फॉर्च्यून थ्रू आउट द यूनिवर्स, विश्व का कल्याण हो, एंड मे ऑल द एनवियस पीपल बी पेसिफाइड, खल सारे शांत हो जाएं, मे ऑल लिविंग एंटिटीज बिकम काम बाय प्रैक्टिसिंग भक्ति योगा, सारे भक्ति के द्वारा क्या हो जाएं, शांत हो जाएं, पेसिफाइड, फॉर क्योंकि बाय एक्सेप्टिंग डिवोशनल सर्विस दे विल थिंक ऑफ ईच अदर्स वेलफेयर, भक्ति में एक दूसरे का सहयोग करते हैं, दो ही चीजें जीवन में है, कॉम्पिटिशन और कोऑपरेशन, कॉम्पिटेटिव मूड या कोऑपरेटिव मूड, और कॉम्पिटेटिव मूड जब होता है तो एनवियसनेस होती, एक दूसरे से ईर्ष्या होती, और जब कोऑपरेटिव मूड होता है तो एक दूसरे का भला चाहते हैं, और जब कॉम्पिटेटिव को हिंदी में क्या कहेंगे, प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा, बहुत मुश्किल शब्द है ना, प्रतिस्पर्धा, कॉम्पिटिशन, और क्यों होती है कॉम्पिटिशन, बिकॉज मैं इससे ज्यादा भोग करूं, कॉम्पिटिशन होती है भोग को एक दूसरे से बढ़ाने के लिए, तो दूसरे शब्द हो जाएंगे, भोग की भावना का त्याग करके कोऑपरेशन में क्या होता है, सेवा की भावना, तो अंग्रेजी में कहेंगे इंजॉइंग एटीट्यूड को छोड़ के सर्विस एटीट्यूड को डेवलप करना, ये प्रहलाद महाराज की परिभाषा यहां है कि भोग के भावनाओं को छोड़ के सेवा की भावना करनी, प्रतिशोध को छोड़ के सहयोग करना है, तो ये क्लासिफिकेशन करते प्रतिशोग, तो उससे होगा भोग का इच्छा, कॉम्पिटिशन, मेरे को ज्यादा भोग मिले इसलिए कॉम्पिटिशन कर रहे हैं ना, तो होगा क्या, एनवियसनेस। एक बहुत अच्छा श्लोक है छठे स्कंद के 11वें अध्याय में, वृत्तासुर इंद्र को कहता है कि मेरे गुरुदेव संकर्षण ने यह शिक्षा दी है, दो श्लोकों में बलराम जी की बहुत उत्तम शिक्षा वृत्तासुर के मुख से इंद्र को बताई गई है, कि हमारे भगवान बलराम जी किसी को भी भोग नहीं देते, ऐश्वर्य नहीं देते, त्रिवर्ग नहीं देते, नाश कर देते त्रिवर्ग उसका, धर्म अर्थ काम नाश कर देते हैं। बोला क्यों? क्योंकि ये हो गए, होगा तो फिर ईर्ष्या आएगी, फिर क्रोध आएगा, एक पूरी लंबी लाइन है कि इससे क्या क्या दोष आते हैं। अभी बोल रहे थे वीरतासुर के चार श्लोकों के ऊपर हैदराबाद में के बेंगलोर में, तो अच्छा लगा कि बलराम पूर्णिमा की शिक्षा के लिए दो श्लोक बहुत अच्छे हैं बलराम जी के, संकर्षण की शिक्षाओं के दो श्लोक, ग्यारहवें हाँ छठे स्कंद के ग्यारहवें अध्याय का 22-23 श्लोक होगा, 21-22-23 श्लोक, इनमें संकर्षण की शिक्षा है, बहुत सुंदर, अति भक्तों के पोषण के, भक्ति के पोषण के लिए बहुत उत्तम वहां दर्शन हुआ। तो यहां वो भाव है असल में कि भक्ति से सहयोग की भावना। इसलिए प्रभुपाद जी एक बार बैठे थे अमेरिका में और कहा कि आप क्या समझते हैं, मैं अमेरिका में हूं? नहीं, मैं वृंदावन में हूं। प्रभुपाद जी आप तो अमेरिका के कमरे में, नहीं बोला वृंदावन में हूं। तो कैसे बोला? वृंदावन इज कॉन्शियसनेस, वृंदावन चेतना का नाम है, वृंदावन में सभी भगवान एक दूसरे को सहयोग करते हैं और भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं। वहां तो गोप हो, गोपी हो, गाय हो, चाहे हिरण हो, चाहे मंकी हो, चाहे मोर हो, सभी भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए काम करते हैं। जब ये भावना आ जाए कि सब एक दूसरे का सहयोग करेंगे और भगवान की ही प्रसन्न करना है, तो उसको कहते हैं वृंदावन कॉन्शियसनेस। वृंदावन कॉन्शियसनेस ने फिजिकल नहीं, ये तो चेतना है, कहीं भी आप रह के एक दूसरे का सहयोग करके दूसरे को भगवान की सेवा में लगा रहे। गोपियां एक दूसरे से सहयोग करते हैं और कहती हैं मुझसे ये गोपी अच्छा कर रही, कंपटीशन नहीं है। इसलिए बहुत अच्छा उदाहरण इसके लिए है कि हर बाप अगर उसका बेटा उससे ज्यादा प्रगति करे तो ईर्ष्या नहीं करता, अपने से अच्छा बनने से। ऐसे भक्ति में दूसरा कोई भक्त अच्छा बने तो ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, ये भाव आना चाहिए। तो इस भाव को कहते हैं एक दूसरे का सहयोग करना, एक दूसरे के सहयोग का कार्य करना। तो यहां एक दूसरे का हम सहयोग करें भक्ति से, और इसलिए हमको भगवान अधोक्षजय श्री कृष्ण की भक्ति में लगना चाहिए और उसका सदा ध्यान करना चाहिए। ये इस श्लोक में प्रहलाद महाराज का भाव है। और श्रील प्रभुपाद ने कहा इसलिए वैष्णव क्या करता है, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः एव च पतितानाम पावने भ्यो वैष्णवे भ्यो नमो नमः। ये तो कल्प वृक्ष की तरह सबका भला करना चाहते हैं। वैष्णव किसी का दुख नहीं देख सकता, किसी का दुख नहीं देख सकता है, ये भगवद गीता का श्लोक है कि अच्छे भक्त को अपने से कंपेयर करके दूसरे से व्यवहार करना चाहिए। जो मुझे दुख देता है दूसरे को दुख देगा, और मुझे सुख देता है दूसरे को सुख देगा। और इसमें प्रभुपाद ने पॉजिटिव क्या लिया है, हमने भक्ति की हमको सुख मिला इसलिए हमको भक्ति का प्रचार करके दूसरों को सुखी बनाना चाहिए। इस श्लोक का भाव प्रभुपाद जी का ये है कि हमको सुख मिला है, कितनी चिंता से मुक्त हो गए, तो हमको दूसरों को भक्त बनाना चाहिए ताकि उनको सुख मिले। तो भक्त कभी दूसरे का दुख देखने नहीं सका। वैष्णव जन तो तेने कही है जो पीर पढ़ाई जाने रे, दूसरे के दुख को जाने। बोलो मक्खन में और संत में बड़ा अंतर होता है। मक्खन को जब गर्मी लगती है तब पिघलता है, लेकिन संत दूसरे का दुख देख के पिघल जाता है। नवनीत संत में बड़ा अंतर है। मक्खन को जब गर्मी लगती है तब पिघलता है, लेकिन संत दूसरे का दुख देख के पिघल जाता है, उसका हृदय द्रवित हो जाता है। तो संत को दयालु भाव से होना चाहिए। प्रभुपाद जी लिखते हैं इसको वैष्णव कहते हैं। वैष्णव कभी अपने लिए प्रार्थना नहीं करता है, लेकिन वो कहता है कि कोई भद्र पुरुष हो या कोई खल हो या कोई बदमाश हो, उनको भी भगवान शांति दो। तीन शब्द लिखे हैं। ही प्रेज, वैष्णव प्रेज नॉट फॉर हिमसेल्फ बट फॉर ऑल लिविंग एंटिटीज, द जेंटल, द एनवियस एंड द मिस्क्रियंस। धीरा धीरा, ये हमारे गोस्वामी के लिए धीरा अधीर, चाहे भले मनस है चाहे कोई खल है, लेकिन उन सब से मित्रता का भाव रख के उनका हित चाहते थे। ये बहुत बड़ा सद्गुण है भक्त का, और श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं सबका भला चाहते। जैसे प्रहलाद महाराज अपने पिता हिरण्यकशिपु का भला चाह रहा है, उसकी भी उद्धार का प्रार्थना करना है कि मेरे पिता को उद्धार करो। श्रीमद् भागवत में भागवत धर्म है, और ये भागवत धर्म किसके लिए है? प्रभुपाद ने एकदम कोट किया है दूसरा श्लोक का एक लाइन, भागवत के दूसरे श्लोक की एक लाइन। कौन सा दूसरा श्लोक? हाँ, परम नृत्य नृत्य मत्साणाम। पहली लाइन क्या है? धर्म प्रोजित कई तब। भगवत गीता कहां समाप्त होती है और भागवत कहां से शुरू होती है? धर्म प्रोजित कई तब। जहां भगवत गीता समाप्त होती है वहां से भागवत शुरू होती है। वहां का सर्वधर्म परिचय है, और यहां दूसरे श्लोक में कहा धर्म सब धर्मों को निकाल दिया। किसको निकाल दिया? इसका मतलब सर्वधर्मान का क्या अर्थ हुआ? धर्म प्रोजित कई तब। और भागवत कहां समाप्त होती है? और चेतन चरितमृत कहां से शुरू होती है? नाम संकीर्तन। इसलिए एक दूसरे से भगवान क्या बोलते हैं भगवत गीता, भगवान क्या करते हैं भागवत, और भगवान क्या सोचते हैं चेतन चरितमृत, एक दूसरे से और गंभीर और गहरा। क्या कहते हैं तो बाहर से सुन लेंगे, क्या करते हैं जब घर में जाएंगे तब पता लगेगा, लेकिन क्या सोचते हैं बहुत सेवा करेंगे तब भी समझ में नहीं आएगा। तो ये एक दूसरे से हायर और हायर है। तो निर्मत्सराणाम, उधर निर्मत्सराणाम का प्रभुपाद ने ट्रांसलेशन क्या लिखा है? 100% प्योर। दूसरे श्लोक में निर्मत्सराणाम का ट्रांसलेशन है 100% प्योर, और उसका भाव है जिसके हृदय में कंपैशन हो। क्या हो? कंपैशन मतलब दया। दो शब्द, एक करुणा, एक है कृपा, एक है दया। दोनों में क्या अंतर? कृपा अपनों के ऊपर होती है, दया कोई भी हो उसके ऊपर होती। कृपा मतलब अपना कोई जानने वाला है उसके ऊपर करते हैं, इसलिए अर्जुन को भगवान कहते हैं कृपया आविष्टम। अर्जुन को कृपा आई क्योंकि अपने सारे रिश्तेदार हैं, दया नहीं है, कृपा। वहां कृपा शब्द आया है ना, कृपया आवेष्टम पूर्णा अश्रु कुलेक्षणम, वहां कृपा है। और महाराज भरत जब वो सावक बच्चे हिरण के वो देखा, वहां दया है, दया का भाव उसको कहते हैं कि जिसको जानते नहीं है उसके ऊपर कृपा। तो दया के भाव को अच्छा माना जाता है, सात्विक है, करके छोड़ देना चाहिए, लेकिन उसको पकड़ लिया तो फिर आसक्ति हो जाएगी। सत्वगुण भी करने तक ठीक है, उसको पकड़ना नहीं। तो ये भाव में दोनों है, शब्द एक जैसे लेकिन दो आकर क्यों है? कोई तो कारण होगा ना। तो कृपया आविष्टम अश्रु पूर्णा कुलेक्षणम विशीदंतम विदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। सो श्री प्रभुपाद जी यहां लिखते हैं परम नित निर्मत्सना, प्रचार केवल दया जिसके हृदय में वही कर सकता है। एक ये सिद्धांत है। प्रभुपाद जी अमेरिका में उतरे तो उनको क्या लगा? कितने दुखी हैं रजो गुण तमोगुण में, देखो तो लोभ लालच में, भागा दौड़ी में, आलस में और प्रमाद में, ये इनको कैसे सुखी किया जाए? ये जो हृदय में करुणा का भाव है, दया का भाव है, ये निर्मत्सर की निशानी है। निर्मत्सर कौन है? जिसके हृदय में दूसरे का दुख देख नहीं सकता, वैष्णव, वो निर्मत्सर है। तो प्रचार करना के लिए सबसे मुख्य जो गुण होना चाहिए हमारे हृदय में, प्रहलाद महाराज से सीखना चाहिए, वो है दया। दया का भाव होना चाहिए, और जहां दया होगी वहां ईर्ष्या नहीं रह सकती। तो दया होगी तो ईर्ष्या कहां से आएगी? सबका दया का मतलब दूसरे का भी भला करना है, तो ईर्ष्या कहां से करेंगे? तो दया कैसे हृदय में? ऐसे यहां तक तो सामान्य धर्म, दया धर्म का मूल है, यहां तक कहा, संतों ने तो कहा दया धर्म का मूल है, मतलब धर्म मतलब स्वधर्म, स्वधर्म मतलब भगवान का सेवक। तो भगवान का सेवक कौन है? जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता है और सबके सबका भला चाहता है। ये तो शब्द यहां लिखा है परम नित्य निर्मत्सराणाम। इसलिए प्रहलाद महाराज प्रार्थना कर रहे हैं कि खलो प्रसीदतम, जो खल है, खल भी भगवान के पीछे लग जाए ना तो जड़ का भी उद्धार कर सकता है। दामोदर लीला में भगवान के पीछे उखल बांध दिया गया, उखल बड़ा खल है, और भगवान के पीछे चला तो नल कुबेर और मणि कुबेर जड़ रूप में पेड़ थे, उनका भी उद्धार कर दिया। तो खल भी बड़ा काम कर सकता है अगर भगवान के पीछे लगे तो। जो उखल को खल कहते हैं, वहां कुछ टीकाकारों ने उसको लिखा है कि यशोदा मैया ने देखा ये उखल के ऊपर चढ़ता है, ये खल का संग करता है, इसी के साथ बांधोगे ना ज्यादा तो खल का संग छूट जाएगा। लेकिन भगवान के पीछे जैसे उखल चला तो उखल भी काम का बन गया, खल भी सुधर गया भगवान के पीछे चलने से, तो वो भी जड़ का उद्धार करने का कारण बन गया, तो खल भी सुधर जाते हैं। बड़े बड़े खल भक्त भक्त बन गए तो बड़ा काम कर लिया, बहुत काम के हो गए। सारे ही ईर्ष्यालु शांत हो जाएं और पूरा संसार ईर्ष्याओं से ईर्ष्यालु पुरुषों से भरा हुआ है, पूरा संसार ईर्ष्यालु पुरुषों से भरा हुआ है। ईर्ष्यालु की परिभाषा क्या है वैसे दोबारा सोचें तो? इंजॉइंग मेंटेलिटी, भोग की भावना। ये गिरिराज महाराज को प्रभुपाद ने पहला प्रश्न पूछा था, पहले गिरिराज महाराज प्रभुपाद से मिलने आए बोस्टन में। प्रभुपाद ने पूछा आप भगवान बनना चाहते हैं कि भगवान की सेवा करना चाहते हैं? गिरिराज महाराज कहते हैं ऐसे लगता है प्रभुपाद ने मेरे अंदर से मेरे घर में मेरी शेंक के वेश भाषण के ऊपर पन्ने के ऊपर लिखा हुआ देख लिया कि आई एम गॉड। यानी प्रभुपाद ने मेरे द्वारा मेरे घर के अंदर मेरे आंखों के सामने जो मैं लिखा था मैं भगवान हूं उसको देख लिया। तो गिरिराज महाराज चुप रहे थोड़ी देर के लिए। तो प्रभुपाद ने कहा अगर भगवान की सेवा करना चाहते हो तो भगवान बुद्धि देगा, लेकिन तुम भगवान बनना चाहते हो तो भगवान एक और कॉम्पिटिटर क्यों पैदा करेगा भाई, एक और दूसरा अपना प्रतिद्वंदी क्यों पैदा करेगा? हा? तो यहां जो शब्द है कि आदमी कौन ईर्ष्यालु होता है, जिसकी भोग की भावना होती है। हाँ, ये पूरा भौतिक जगत ईर्ष्यालु से भरा पड़ा है। जैसे कोई अगर दूसरों का भले का सोचे तो फिर ईर्ष्या से बच सकता है। जो कृष्ण भावना में आएगा, भगवान की सेवा में लगेगा, उसका है मन साफ हो जाएगा। चेतो मरणम, क्या है, माइंड ऑफ द एनवीस, मनश्च भद्रम भजताद अधोक्षजे, मन शांत हो जाएगा अधोक्षजे का भजन करने के लिए। इसलिए नरसिंह देव को हृदय में बुला रहे हैं, बाहर नरसिंहा हृदय नरसिंहा, भगवान नरसिंह देव हमारे हृदय में आ जाए और हमारे अंदर जो भी बुरे जितने भी बुरे विचार हैं उनको साफ करें, मन को साफ कर दे और हम भगवान नरसिंह देव का शांति से भजन करें और पूरा विश्व शांत हो जाए। इसके बाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का भाव प्रभुपाद जी वहां लेके यहां लिखते हैं कि शुद्ध भक्त अपने लिए कभी कोई आशा नहीं रखता है, कुछ नहीं मांगता है, लेकिन मांगना तो भक्त को भी पड़ता है। जैसे चेतन महाप्रभु ने दो श्लोकों में मांगा है, आई नंद तनुज किं करम, ये श्लोक प्रभुपाद ने लिखा है, और फिर दूसरा श्लोक भी लिखा है कि दो श्लोकों को दे दिया, आई नंद तनुज दे दिया, फिर कहा मम जन्मनी जन्मनी ईश्वर भवताद भक्ति। तो भक्त को मांगना चाहिए, क्या मांगना चाहिए, तब उदाहरण देते हैं कि भक्त को मांगना चाहिए दूसरों का भला, फिर फिर उदाहरण देते हैं कि चाणक्य पंडित ने कहा है दो प्रकार के